आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चारों धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले हिस्सों में बारिश, ठंड में हुआ इजाफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तराखंड को भी अपने संसाधनों और क्षमताओं के अनुरूप विकास की एक स्पष्ट दिशा तय करनी होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 7 अप्रैल से शुरू होगी। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारों धाम सहित अन्य ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। एक रिपोर्ट।
चमोली जिले में बद्रीनाथ, औली, नीति घाटी और माणा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी में बर्फबारी हुई। पहाड़ों की रानी मसूरी और टिहरी जिले के धनौल्टी में ताजा हिमपात होने से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। इसके अलावा कंडा देवी, कद्दूखाल और नागटिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बागेश्वर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उधर देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र के लोखंडी सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी साल की पहली बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हुई। लंबे समय बाद बर्फबारी और बारिश से जहां किसानों और बागवानों को राहत मिली है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों के अधिकांश स्थानों पर 2300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी साकार हो सकता है जब देश का प्रत्येक राज्य समान रूप से विकसित हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड को भी अपने संसाधनों, क्षमताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप विकास की एक स्पष्ट और दीर्घकालिक दिशा तय करनी होगी। श्री धामी आज देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि मानव केंद्रित, समावेशी और सतत विकास की मजबूत नींव पर आधारित होना चाहिए।
विकसित भारत बनाने के लिए हमें विकसित उत्तराखंड बनाना होगा। हमारी जिम्मेदारी विकसित उत्तराखंड बनाने की है, और ये हम सबके अंदर भाव ला पाए कि 2047 में कैसा आपका गांव होगा, यानी कि यहाँ की सड़कें कैसी होंगी, यहाँ की पेयजल व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ का स्कूल कैसा होगा, यहाँ का अस्पताल कैसा होगा, यहाँ के स्टेडियम कैसे होंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था क्या होगी। ये एक विजन अगर हम सब पर उतार पाए तो मैं समझता हूँ कि जो जनगण मन को जोड़े जाने की बात है, उसको हम अपने साथ जोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और समान रूप से विकसित हो, ये संकल्प हमारा तभी साकार होगा जब सबका जो है इसमें समन्वित रूप से प्रयास होगा।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तर रेलवे मुरादाबाद में मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव के साथ आज देहरादून में एक बैठक हुई। बैठक में उत्तर रेलवे से संबंधित प्रकरणों और परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने ऋषिकेश डोईवाला बाईपास रेलवे लाइन परियोजना के तहत देहरादून के जिलाधिकारी को राजाजी राष्ट्रीय पार्क और वन विभाग की करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त सर्वेक्षण कराते हुए निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने देहरादून मोहंड सहारनपुर टनल आधारित रेलवे लाइन परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे कराते हुए अद्यतन स्थिति से शीघ्र अवगत कराने की बात कही। मुख्य सचिव ने रेलवे को हर्रावाला रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण का मास्टर प्लान भी शासन से साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि रेलवे और जिला प्रशासन संयुक्त सर्वे करते हुए शीघ्र ही निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध कराए। मुख्य सचिव ने कुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत रेलवे अधिकारियों को हरिद्वार जिला प्रशासन और राजकीय रेलवे पुलिस को मिलकर संयुक्त रूप से यातायात प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। वहीं गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा 7 अप्रैल से प्रारंभ होगी। आज वसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में आयोजित एक धार्मिक समारोह में महाराजा मनुजयेंद्र शाह की उपस्थिति में पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने कपाट खुलने की तिथि घोषित की। साथ ही गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा की तिथि भी तय की गई। इस दौरान डिमरी धार्मिक केंद्र पंचायत के प्रतिनिधियों ने गाड़ूघड़ा यानी तेल कलश राजमहल को सौंपा। आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने की विधिवत जानकारी दी।
आज राज दरबार में हमारी जो पुरानी परंपरा है और पुरानी परंपरा से इसी गति से महाराजा साहब बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि का लग्न का समय का निर्धारण करते हैं और उसी दिन वसंत पंचमी के दिन जो हमारा गाड़ू तेल उत्सव मनाया जाता है जो भगवान की पूजा में प्रतिदिन लिया जाता है और वो तेल जो है भगवान के श्री विग्रह पे लगाया जाता है उसकी शुभ तिथि का भी आज ही निर्धारण हुआ है। जो बद्रीनाथ जी के कपाट का शुभ मुहूर्त तय हुआ है वो 23 अप्रैल 2026 6:15 पर कपाट उद्घाटन होंगे, कपाट खोले जाएंगे।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कपाट खुलने की तिथि तय होते ही आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के 6 दीक्षांत समारोह में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को उपाधियां और सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने परिसर में अतिथि गृह टाइप 5 आवास और बहुउद्देश्य भवन का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के 21,664 विद्यार्थियों ने आज डिग्री प्राप्त की है और वे सभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी भारत के वर्ष 2047 के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। राज्यपाल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि डिग्री प्राप्त करने के बाद वे केवल नौकरी खोजने वाले न बने बल्कि रोजगार सृजक, उद्यमी और नवाचारकर्ता बने। प्रदेश में आज वसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया। हरिद्वार जिले के आश्रम और अखाड़ों में भी वसंत पंचमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। कई आश्रमों में यज्ञोपवीत संस्कार किए गए। वहीं वसंत पंचमी पर हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बारिश और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया।
जय हो माँ गंगे की। आप बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे हम माँ गंगा की जो है यहाँ पर स्नान करने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो आदमी प्रयागराज नहीं जा सकता हरिद्वार में आकर अपनी संतुष्टि यहाँ परम होती है और भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे और जय हो माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माँ गंगे।
वसंत पंचमी पर गंगा तटों पर लोग पीले वस्त्र धारण किए भी नजर आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चारों धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले हिस्सों में बारिश, ठंड में हुआ इजाफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तराखंड को अपने संसाधनों और क्षमताओं के अनुरूप विकास की एक स्पष्ट दिशा तय करनी होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा 7 अप्रैल से शुरू होगी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के 6 दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।